ओम शांति, ओम शांति। आपको दो दिन पूरे हो गए, तीसरा दिन शुरू होता है। अपने घर में आए और इसका परिचय तो आपको यहाँ के वातावरण से, यहाँ का एक रूहानी स्नेही परमात्म प्यार, अगर आपसे पूछे तो स्वयं ही आप अनुभव भी कर रहे हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो दो बातें इकट्ठी इकट्ठी हैं, तीन बातें एक्चुअली इकट्ठी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय तो प्रजापिता ब्रह्मा का अपने एक सॉन्ग सुना, ये परिवार है। परमपिता परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है और वो निराकार है। परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं की तरह मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उनके शरीर है ही नहीं, तो शरीर की कोई आयु की बात ही नहीं। जैसे आत्मा अविनाशी है, शरीर द्वारा आत्मा ने, हम जब जन्म मानते हैं तो आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया और कर्म इंद्रियों से कर्म करना शुरू किया तो कहेंगे जन्म हुआ। माता पिता कौन है, कहते रहते कहाँ है, वो लौकिक परिचय इस शरीर के नाम से परिचय मिलता है। आपको परमपिता परमात्मा का परिचय और अपना परिचय मिला होगा। ये ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने साकार तन में प्रवेश होकर जो कार्य किया, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा और फिर साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाई, जीवन चरित्र कैसे बने, भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अपने अंदर शक्ति कैसे भरे, पूजा तो दिन रात बड़े भावना से करते हैं परंतु जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो चेतन में कब थे। अब ये मूर्ति ऐसे शरीर से तो नहीं उतरा है आकाश से, न शरीर से ऐसे धरती से प्रकट हुए। देवियों की आप पूजा करते हैं, नवरात्र होते हैं, उनके कोई शरीर का परिचय आपको नहीं होता। दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, सावित्री, शीतला, काली, कभी बेबी रूप उनका देखा, कभी बचपन का चित्र देखा है, शक्ति स्वरूप ही देखे, कहां से शिव से प्रकट हो गई, तो शिव से शरीर नहीं प्रकट हुआ। शरीर में रहते हुए शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा मनुष्य ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो जब हम छोटे, मैं 4 साल 5 साल की होंगी, हमारे घर में एक कैलेंडर था, उसमें ब्रह्मा दाढ़ी वाला दिखाते हैं, चार मुख वाला, जो हमारे पास भक्ति में ब्रह्मा जी का फोटो है, भक्ति में हम देखते हैं, तो उनके मुख से वो फोटोग्राफ जो कैलेंडर था, वो कैलेंडर से बहुत सारे खिलौने निकल रहे हैं और ढेर खिलौनों का लगा हुआ है। मैं सोचती थी ये बुढ़े बाबा जी के पेट में फैक्ट्री होगी, जो इतने सारे खिलौने, इतने सारे बच्चे थे, मैं खुद ही बच्ची थी तो मैं भी वो बच्चों को देखती थी, मतलब फोटो में तो वो ही था, तो इतने सारे उनके फैक्ट्री बड़ी होगी, इतने सारे उसमें से निकल आए। वो अभी समझ में आया कि भक्ति में चित्र हैं, वास्तव में जो भक्ति के चित्र बने हैं वो परमात्मा के चरित्र के चित्र हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जिन आत्माओं को ज्ञान दिया उनका जीवन बदल गया, नया जीवन मिल गया, शरीर छोड़ा नहीं पर शरीर के भान को छोड़ दिया, स्वमान में स्थित हुए अभिमान छोड़ दिया, ईश्वरीय शान का पता चला कि हम कौन हैं, असली हमारा स्थान कौन सा है, असली हम किसकी संतान हैं और किस कुल के हैं, ईश्वर की संतान है, ईश्वरीय कुल के हैं। तो ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ज्ञान मिला उसमें शरीर में रहते हुए भी पुराने शरीर के भान को छोड़ दिया, शरीर नहीं छूटा, शरीर वही है, शरीर का नाम भी वही है। कभी सन्यासियों का नाम बदलता है, भाई त्याग किया है तो पुराना याद ना आवे, और अभी बड़े नाम बदलने की जरूरत नहीं है पर पुराने आदतें ना रहें। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो जो छोड़ देता है उनको नया जन्म मिलने पर किसी को भी अपने पिछले रिश्तेदार को याद नहीं रहता, घर का एड्रेस याद नहीं होता, प्रॉपर्टी कितनी थी ये याद नहीं होता। नया जन्म में पुराने जन्म की न संबंध याद रहता है, न वस्तु याद रहती है, न वैभव याद रहता है, न मैं कैसा लगता था और क्या करता था, कुछ याद नहीं रहता, पर संस्कार याद रहते हैं, भाई अच्छे संस्कार लेके आए। बच्चा कोई कोई जन्मते ही मुस्कराते बहुत अच्छी तरह से खींचने वाला होता है, रोता कभी नहीं है, हंसते हंसते दूसरे की गोद में चला जाएगा, सबको आकर्षित करेगा, और कोई होगा जो रोता ही रहेगा, परेशान होगा, माँ बाप भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। किसी की आदत जिद करने की है, माँ बाप को तंग करने की है, कोई बच्चा माँ बाप को सुख देने वाला होता है, कहते संस्कार है। एक ही घर में डाई तो एक ही है, फैक्ट्री तो एक ही है, पर जन्म लेते शक्ल भी बदली हुई है, ट्विन्स पैदा हुए हैं, शक्ल वैसी है पर अकल अलग अलग है, संस्कार बिल्कुल अलग है, विजडम बिल्कुल अलग है। तो आत्मा के जो संस्कार हैं वो ओरिजिनल संस्कार, जब आत्मा अपने को आत्मा समझती है तो चैतन्यता प्रकट हो जाती है। इसको हम आपने जो लेसन लिए उसमें सोल कॉन्शियसनेस शब्द बहुत बारी सुना होगा, आत्माभिमानी या सोल कॉन्शियस, यानी सोल कॉन्शियस हो गई। जैसे इंसान अनकॉन्शियस होता है तो दिमाग भी है, दिल भी है, व्यक्तित्व अंदर है पर पहचानता नहीं है किसी को, फीलिंग नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, कहते बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। भले उस समय वो बड़ा वाइज डॉक्टर है, अनकॉन्शियस है, किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। इंजीनियर है कोई डिजाइन, कोई आपका नक्शा नहीं बनाएगा मकान का। कारपेंटर है कुछ ठीक नहीं करेगा। वो प्रोफेशन तो है पर एक्शन कॉन्शियस नहीं होता। तो सोल कॉन्शियस का मतलब है कि सोल तो हम सब आत्माएं हैं, परंतु हम बॉडी कॉन्शियस से पले हैं। जन्म से लेते ही तो बड़ी सुंदर बिटिया है, तू मेरा राजा बेटा है, तू तो मेरा बड़ा मुस्कुराता फूल है, अरे तू तो मेरा हीरा बेटा है। यानी बेटा 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 करके उसको पता चल गया कि मैं बेटा हूँ, और बेटी बेटी किया तो उसको पता मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। तो हमारे माँ बाप ने हमको पक्का कराया कि तुम लड़की हो या लड़का हो, जिसको कहेंगे हमारे देह का ज्ञान और देह का अभिमान पक्का कराया। साथ साथ हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, आंखें देखती हैं, कान से सुनते हैं, खाना मुख में डालते हैं, मुख से बोलते हैं, तो तेरी नाक कहाँ है, तेरी आँख कहाँ पर है, ऐसे माँ बाप बच्चे दादी गोद में लेगी तो ऑर्गन्स का पहचान देगी। तो हमारे माँ बाप ने हमको हमारे शरीर की पहचान दी है, आत्मा की पहचान नहीं दी है। उनको भी पता नहीं था, उनको भी माँ बाप ने ऐसे पहचान दी थी। तो भक्ति में हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज हमको सिखाते आए वही हम सीखते आए। हमने बहुत सुंदर बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े, भक्ति किया, कीर्तन किया, बड़े सुंदर फुल साइज के मिरर हैं शास्त्र हमारे, यानी बहुत सारी बातें अंदर रियलाइज कराने वाली है। परंतु वो इतनी मिक्सचर चित्र के साथ लिखने वाले ने लिख दिया, चित्र बनाने वाले ने चित्र बना दिया। भाई कोई कही तो पूरा राक्षस है, इसके मुंह से तो पत्थर निकलते हैं तो चित्र बनाएगा तो पत्थर निकलते दिखा देगा। ये कहेगी ये तो जैसे देवी है, इसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं तो फूल निकलते हुए दिखाएगा, वो अंदर बाग तो नहीं लगा हुआ है जो फूल निकल आएंगे, कोई पहाड़ तो नहीं है जो टूटते टूटते पत्थर निकल आएंगे। मतलब भाव ये है कि जो हमारी भक्ति में हमारे पास रिचुअल्स हैं, रिचुअल रीत रस्म वो चलती आई है, पर हमको रहस्य नहीं पता चला। कान रस तो हो अच्छा है, कथाएं सुनने का शौक तो होता है, परंतु कथा क्या है अर्थ पता नहीं होता, क्योंकि हमने दूसरों का असली अनुभव क्या था वो हम सिर्फ चित्र में पिक्चर देखी तो उसमें मिक्सचर ही देखा सब कुछ। तो ये ज्ञान क्या है? अब जैसे अगर अंधे को अपना फेस देखना हो तो क्या चाहिए? दर्पण चाहिए ना। पर अंधे को आंखें तो हैं, दर्पण भी है, लाइट नहीं है। ऐसे हमको बुद्धि तो है परंतु दिव्य दृष्टि नहीं है, ज्ञान का लाइट नहीं है। और दर्पण मेरे पास अगर है सामने और मुझे अपना फेस देखना है तो मेरे को अपनी आंखें चाहिए ना। मैं दूसरे की आंख से उसका चेहरा नहीं देख सकती, अपना चेहरा नहीं देख सकती। तो ये ज्ञान क्या है? अपनी आंख से दिव्य बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखना। कैसे देखना? ज्ञान की लाइट से देखना, समझ से देखना, रोज के व्यवहार से देखना, तो वाणी भाषा जो बोलते हैं उससे समझना। ये कभी नहीं कहा मैं सर दर्द हूँ, मैं पेट दर्द हूँ, मैं हाथ दर्द हूँ, मैं टांग टूट गई हूँ, मेरी टांग टूटी, मेरा है, तो वो मैं कौन हूँ? और वो सो मैं जो चैतन्य आत्मा निकल गई आत्मा, तो कहेंगे हे परमात्मा इसकी आत्मा को शांति दो, फिर ये सिर्फ जिंदा है कहेंगे हे भगवान मेरे को मन की शांति दो, हे भगवान सद्बुद्धि दो, हे भगवान इनके संस्कार अच्छे बनाओ। मर गया तो फिर शरीर तो ही पड़ा है, आत्मा संस्कार साथ लेके गई, मन भी ले गई बुद्धि भी ले गई, तीनों चीजें साथ चली गई, लाइट चली गई तो ज्योत भी चली गई, उसके अग्नि भी खत्म हो गई चली गई, प्रकाश भी खत्म हो गया, तीनों चीजें बुझ गई ना, दीवा जगते तीनों जाग गई, बुझती बुझ गया, तो आत्मा निकली तो मन भी साथ ले गई, बुद्धि भी ले गई, संस्कार भी ले गई, शरीर छोड़ दिया, शरीर तो एक कपड़ा था। तो पहला जो आपको ज्ञान मिला, अब ये जो संसार में हम बड़े होते गए, हमको परिस्थितियां बार बार आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, अब वो फेस कैसे करें। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना में आज 80 वर्ष हो गए हैं, बहुत सारी बातें आई, बहुत परीक्षाएं आई, बहुत टेस्ट आए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कई लोगों ने जिसने जो आया सो बोला। एक तो बहुत फेमस बात थी, ब्रह्मा कुमारियां जादू कर देती हैं, उनकी आंखों में नहीं देखना, वो जादू कर लेंगी। अगर भाई जादू करने की बात है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या बड़ों बड़ों को जादू कर देवे तो फिर तो सारी गवर्नमेंट क्या, सब लोगों के जादू हो जाएगा आ जाएंगी। पर जादू का मतलब या परिवर्तन हो जाना, तो जीवन परिवर्तन होता है आत्मा का, कोई बाहर का जादू नहीं है। जादू ये है कि इंसान इंसान को देवता नहीं बना सकता, पर परमात्मा का जादू ये है कि इंसान को देवता बनाता है। मानुष से देवता किए करत न लागी वार, परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाते देर नहीं लगी। और परमात्मा तो है निराकार, ऊपर से बोले कैसेगा, और बोले भी सही तो हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ तो है नहीं जो कैच कर सके। तो मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेता है। मैं दो टॉपिक इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि एक टॉपिक है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय और दूसरा आज का है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें, विजडम टू फेस द चैलेंजेस। तो मैं ये दोनों, ये तो हम इस संस्था की स्थापना की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी 67 साल हो गए, मैं 16 साल की आई थी और ये 66 साल में बहुत सारी बातें देखी सीखी समझी और रियलाइज किया। भक्ति में हम क्या कर, भक्ति भी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बचपन में 7 आरतियां रोज करती थी, जय जगदीश हरे, गणेश जी की, तुलसी जी की, हनुमान चालीसा, जो भी मतलब था। स्कूल जाती थी पहले मंदिर जाके जाती, आती थी पहले मंदिर जाके कथा सुन के फिर आती थी, तो संस्कार थे मतलब। पर जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि 4 हाथ वाले कोई इंसान होता तो नहीं है। और होता था कि अगर रावण के 10 सिर है उनके बेटे के 10 सिर क्यों नहीं है, बाकी देवताओं के किसकी 4 भुजाएं हैं, श्री लक्ष्मी नारायण महालक्ष्मी को 4 हाथ दिखाते हैं, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण को 4 हाथ दिखाते हैं, उनके बेटों बेटियों के हाथ 4 क्यों नहीं है, क्वेश्चन उठता था। जैसा आरती करते थे ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता मां देवा की सवारी सारा। तो मैंने एक बार पंडित जी से पूछा, 7 साल की थी मैं, पंडित जी बेचारा चूहा तो मर जाता होगा, वो नवा चूहा आता था क्या रोज, जो गणेश जी गणेश जी उस पर सवारी करते थे। पंडित जी आए, लड़की क्या करती है पता नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए आई है, इसको क्यों यहाँ लेके आते हो? मैं रोज आती थी, आरती करती थी, खुश होते थे, पर मैंने क्वेश्चन पूछा तो कहा डिस्टर्ब करने आई है। खबरदार अगर भगवान की पर कोई क्वेश्चन उठाया तो, वो त्रिशंकु ने क्वेश्चन उठाया था उसको ऊपर आकाश में लटका दिया, तुम भी ऊपर लटकी रहोगी, वो अभी तक लटका हुआ है, डर पैदा कर दिया। परंतु जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, एक्चुअली मेरी एजुकेशन भी ड्रामा अनुसार बहुत फास्ट हुई है, मैंने सिचुएशन ऐसी लड़कियों का स्कूल हायर क्लास तक नहीं था, तो भाइयों के स्कूल में लड़कों के स्कूल में पढ़ने जाना था, तो एक एक साल में दो दो क्लासेस की थी, तो 600 लड़के और सिर्फ 10 लड़कियां, जिस कॉलेज में फिर हमको पढ़ा हमने, तो समझ आती, समझ तो थी पढ़ाई के हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो डरो नहीं, नहीं क्लियर है तो दो बार चार बार भी पूछो, भक्ति में तो श्राप न लग जावे। अरे भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना, पंडित जी ने कहा भगवान पर डाउट करती हो, बड़ी अपने आप को विद्वान समझती हो, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, मतलब अभी कोई मतलब नहीं, समझ नहीं आता था, अभी समझ में आता है कि भगवान आकर के का क्या कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य किसी को पवित्र बनाने की शक्ति नहीं देता है, खुद भी पतित हैं, दूसरों को भी पतित बनाते हैं, उनके संग के रंग से आत्मा गिरती चली जाती है, सत्य के संग से परमात्मा के संग से तर जाती है, बेड़ा पार होता है, समझ मिलती है। तो परमात्मा स्वयं साधारण तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान देते हैं, इसका मतलब परमात्मा हमारा शिक्षक हो गया ना, टीचर हो गया, तो टीचर की रोज की पढ़ाई, अभी आपको ऊपर अलग बिठाते हैं और जो बाकी दोस्त आए हुए उनको यहाँ अलग बिठाते हैं, कहीं कोई 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 सीक्रेट तो नहीं है जो आपसे छुपाए, भाई आपको तो वहां बिठाया है, इनको यहाँ बिठाया है, अंतर क्या है? उन्होंने वो मैट्रिक पास कर ली है, फिर दूसरे स्कूल में चले गए, आप लोग अभी पढ़ने के लिए आए हो तो नेचुरली आपको दूसरे स्कूल में बिठाएंगे ना, फर्क कुछ नहीं है, भोजन वही मिलता है, सब कुछ बाकी सारा सब कुछ वही मिलता है, पर पढ़ाई आपको अलग मिलती है। क्यों पढ़ाई अलग मिलती है? कि आपके आत्मा में आपकी जो असली संस्कार है उसकी आपको पहचान मिले, आपके अंदर जो आत्मिक शक्तियां ओरिजिनल परमात्म देन है उसको आप यूज करना सीखो, नहीं तो सिर्फ मांगते ही रहते हैं, हे परमात्मा शक्ति दो, भक्ति दो, दुख से छुड़ाओ, मुक्ति दो, मन की आश पूरी करो, या साधन मांगेंगे, सुख सुविधाएं मांगेंगे, तो परमात्मा सिखाते हैं कि तुम मनुष्य से देवता बन गए, स्वर्ग के विश्व के महाराजा महारानी बने, तो प्रकृति तो तुम्हारी दासी होगी ना, तत्व भी तुम्हारी दासी बन जाएंगी, तुम अपने आत्मा की जो सात शक्तियां हैं उनको जागृत करो, आत्मा के अंदर जो कमी कमजोरी है उनको दूर करो, उसकी शक्ति मिलती है। इसलिए नंबर वार यानी कोर्स है, आत्मा क्या है, आत्मा की एनाटॉमी क्या है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहाँ जाती है, आ रही आत्माएं तो कहाँ से आ रही हैं, अलग अलग संस्कारों वाली क्यों हैं, फिर आत्माएं अलग अलग संस्कार होते, एक ही घर में एक सुखी है दूसरा दुखी है, एक समझदार है दूसरा बेसमझ है, तो ये सब कारण क्या है, हम एक दो को दुख क्यों देते हैं, कर्मों का हिसाब किताब क्या है, तो ये स्टेप बाय स्टेप नॉलेज समझाई जाती है। कर्म फिलॉसफी क्या है वो बताई जाती है। उससे पहले आत्मा के अंदर असली शक्ति कौन सी है, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान हो तो पता चले, समझ आवे, अनुभव भी बढ़े और फिर दोबारा उससे सेफ रहे। छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं भाई, कोई छोटी परिस्थिति आती है ना, अभी सर्दी का मौसम आया, बच्चा बाहर जा रहा है, आप कहेंगे स्वेटर पहन के जाओ, शाल ओढ़ के जाओ, ठंड बहुत है, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आपने सिखाया उसको, धूप है भाई, चश्मा पहन डालो या छतरी लेके जाओ, बरसात पड़ी है, छतरी खोल के जाओ। आपने जो जो जैसा समय है उस अनुसार बच्चे को सिखाते हैं। जंगल में जाना है तो चप्पल पहन के नहीं जाओ, बूट पहन के जाओ। सांपों के स्थान पर काट लेंगे सांप, अगर जंगल में ऐसे ही चले जाएंगे बिच्छू काट लेगा, यानी समझ देते हैं ना, साथ साथ तरीका बताते हैं। तो ऐसे आत्मा दुखी ना होवे, आत्मा को सच्ची शांति मिले, आत्मा को जीते जी रूहानी प्यार का अनुभव होवे, जीते जी वो स्वयं में अपनी दिव्यता और पवित्रता देवताई वाली संस्कार अनुभव करे, जीते जी सुख देव बन जावे, दुख ले जो दुख टच ही ना करे उनको, फायर प्रूफ ड्रेस पहन के आग में कूदते, फायर प्रूफ ड्रेस पहनी हुई है, पर बुझानी है आग तो पानी का साधन भी चाहिए। ते संसार एक दुखों का भंडार है, सागर है, कांटों का जंगल है, कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही रहते हैं। अब उनको फेस कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है, छोटी सी बात पर बड़ी बात यही है कि आज इंसान को कभी भी किसी के भी कोई अपमान करता है सहन नहीं कर सकते, बेइज्जती करता है सहन नहीं कर सकते, निंदा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, नाम का नाम बदनाम होता है अच्छा नहीं लगता है, आपस में दुश्मनी हो जाती है। अब वो उसको हैंडल कैसे करे, सच्चाई क्या है, कोई कोर्ट में जाकर के सच्चाई से नहीं निकलती, कोर्ट में जाओ और ही ज्यादा फंस जाओ, धन भी गंवाओ, समय भी गंवाओ, संबंध भी गंवाओ। तो ये परमपिता परमात्मा सत धर्म भी स्थापन करता है और राजयोग सिखा के कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है। तो हमारी जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं उनके हम राजा कैसे बने, उसके लिए राजयोग शिविर है, पर दो दिन में तीन दिन में इतनी सारी गहरी बातें, एमए की डिग्री तो नहीं पास कर लेंगे ना, यहां तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक सैंपल दिखाया जाए, बताया जाएगा, थोड़ी छोटी छोटी बातें समझाते जाएंगे, पर अभ्यास करेंगे तभी होगा ना। जैसे आप देखो बच्चे आपके पढ़ के आते हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है, अगर वो होमवर्क ना करेंगे तो दूसरे दिन स्कूल में नेक्स्ट पढ़ाई क्या है, नई बुद्धि में बैठेगी ना। तो ये भी इसी प्रकार से आपको होमवर्क मिला है कि यहाँ क्लास में बैठ के आपको पता चला, पहले पता था पर उस बात का अभ्यास नहीं किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरा एक मकान है, इसमें मैं रहने वाली हूं, ये आंखें मेरी खिड़कियां हैं, ये कान मेरे वेंटिलेटर है, ये मेरा दरवाजा है मुख, या ये मेरी मोटर है, मैं इसका ड्राइवर हूं, ये एक डब्बी है, मैं इसमें हीरा हूं। कोई भी एक एग्जाम्पल यानी सामने रखेंगे तो उस अनुसार अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझेंगे तो आत्मा की क्वालिटीज को यूज कर सकेंगे। देह समझेंगे तो देह में तो सोच ही नहीं है, डेड बॉडी में सोच है, समझ है, दिमाग तो पड़ा है, फीलिंग है, हार्ट तो पड़ा है डेड बॉडी में, हैंड्स है, हाथ का पैर सारे बहुत अच्छे हैं, उठ के कर्म करने लगता है, नहीं। तो करने वाली, सब सोचने वाली, समझने वाली और करने वाली मैं आत्मा हूं। पर मैंने जब अपने आप को शरीर समझा तो शरीर तो पांच तत्वों का पुतला हूं, और पांच तत्वों में आग को समझ नहीं है कि मैंने किसका घर जला दिया। सुनामी आ गई, हजारों मर गए, समुद्र को यह नहीं आएगा मैंने इतने मार दिए। तत्वों को पता नहीं, तूफान आया सारा घर टूट गया, दोबारा बनाना पड़े। तूफान को पता चला, हवा को पता चला कि नुकसान किया है, यानी उसमें कोई फीलिंग नहीं है। तो हम जब देह के भान में आ जाते हैं तो किसी को दुख देने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी को धोखा देने में रियलाइज नहीं करते हैं। पर कर्म का हिसाब तकरार तो बन जाता है, भले रियलाइज ना भी करो, इग्नोर भी करो, हिसाब किताब तो बन गया। तो उस हिसाब किताब अनुसार फिर पार्ट प्ले करना पड़ता है, लेन देन के हिसाब से। कोई बच्चा बना तो किसी को देने पड़ा, किसी से मिलता है, किसी को देते हैं। शरीर का रोग आया, पैसा खर्च करना पड़ा। कोई ऐसा सिचुएशन आई जिसमें आपको परेशानी परेशानी है, चिंता ही चिंता है, डर ही डर है, तो ये परिस्थितियां आती क्यों हैं? अगर आती हैं, वो आती इसलिए कि हमने अज्ञानवश सब उल्टे कर्म किए, क्योंकि ना हमारे शरीर तो पांच तत्वों का पुतला है ना। पांच तत्व का मतलब मिट्टी, धरती, फिर 80% पानी और ब्लड उसमें, फिर जो है श्वास के बिना तो जिंदा नहीं रहेंगे, हीट के बिना भी नहीं, टेम्परेचर गया तो आप भी गए, आवाज खाली स्थान हो तो आवाज सुन सकेंगे, आवाज कर सकेंगे, तो धरती, पानी, अग्नि, जल और आकाश, ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है। और मैंने अपने आप को शरीर समझा तो मेरे अंदर उसकी ही शक्ति आएगी, समझ नहीं आएगी। पर आत्मा हूं तो समझती हूं, आत्मा काम कर रही है, पर ब्लॉकेज है। समझ तो पता होते भी शक्ति नहीं है कि मैं वो उल्टा काम ना करूं। कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था कि ये काम करूं, पता नहीं कैसे कर लिया, करना नहीं चाहिए था, करने के पीछे पछताते हैं। बुरा नहीं करना चाहता हूं हो जाता है, अच्छा चाहता हूं पर हो नहीं सकता, शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा ने, आत्मा अपने आप को समझा नहीं है। अब जब आत्मा समझते हैं तो ऑटोमेटिकली संसार में रहते हुए भी, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि आत्म तज ये काया तैसे जीर्ण वस्त्र छोड़े, जैसे ये शरीर जैसे पुराना कपड़ा छोड़ दिया जाता है, ऐसे आत्मा कपड़े को छोड़ देती है। और रिश्ता सिर्फ कपड़ा लेने पर ही जुटा है, शरीर लेने पर ही जुटा है, तो पर रिश्ता जिंदा रहते आत्मा से नहीं जुटा। अगर हमारा शरीर से रिश्ता होता, आत्मा से होता, तो हम आत्मा के गुण एक दो को लेन देन करते। पर जब शरीर छूट गया, जो मेरा बेटा था, जो मेरा हस्बैंड था, उसको मैं अपने आप ही जाकर के अग्नि में डालती हूं। अगर मेरा रिश्ता शरीर के साथ होता तो मैं अपने रिश्तेदार को जला सकती थी क्या? रात भी नहीं रखते हैं, पहले दिन ही अग्नि का अग्नि संस्कार हो जावे, तो रिश्ता किसके साथ था? आत्मा निकल गई तो रिश्ता खत्म। आत्मा है तो रिश्ता है, पर आत्मा समझ के एक दो से बात नहीं की है। तो वो जो आत्मा के अंदर ज्ञान है, उसका लेन देन न होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, समझ नहीं आती है। बच्चे को समझाते हैं माँ बाप, बच्चे को समझाते हैं बच्चे माँ बाप को समझाते हैं, बहुत बारी समझाना पड़ता है। तो यही कहते हैं, मामा यू डोंट अंडरस्टैंड मी। वो बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, बच्चे आप मुझे समझते नहीं हो, 10 बारी बोला है काम नहीं किया, दीवारों से बोल रही हूँ क्या? तो सचमुच दीवार से ही तो बात कर रहे हो, सुनता नहीं है, दीवार से बात कर रही हूँ तो सचमुच बॉडी क्या है? एक मकान ही तो है, मकान को बोलेंगे आपसे सुनेगा क्या? आत्मा को आत्मा से बोलेंगे टच होगा। तो जितने परसेंटेज आत्मा सोल कॉन्शियस है, उतने परसेंटेज उसकी ज्ञान की लाइट जलती है, जली रहती है। जितने परसेंट में हम एक पिता परमात्मा की संतान है, तो प्रेम स्वाभाविक जागृत रहता है। जितने परसेंटेज तक मैं भगवान की संतान हूँ, तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तो उसके अंदर डिविनिटी रहती है, प्योरिटी रहती है, वो ग्रेटनेस है, ब्यूटी है, अंदर की स्ट्रेंथ है, रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है। वो जो पवित्र जीवन जीते हैं उनको महात्मा जी कहते हैं। अब है तो इंसान, कोई मत्थे पर थोड़ी लिखा हुआ है महात्मा या पापात्मा या धर्मात्मा। आत्मा ने कर्म किया वैसा नाम पड़ा। तो अब आत्मा में शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, आनंद की शक्ति, सत्यता की शक्ति। सच्चिदानंद की संतान है। वो शक्तियां काम करेंगी जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, तो सिचुएशन ऐसी आती है, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बनने देती। तो परिस्थिति पराई प्रभाव, पराया प्रभाव है, वो हमारे पर ना पड़े, इसलिए स्व स्थिति बनाने के लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यही समझने में आत्मा। अब उसमें बैठ के भी कोई जरूरी ये नहीं कि बैठे बैठे सब सोचने में आत्मा, खाते भी तो मैं आत्मा ही खा रही हूँ ना शरीर द्वारा, नहा रही हूँ तो मैं आत्मा नहा रही हूँ ना शरीर द्वारा, चल रही हूँ तो मैं आत्मा चल रही हूँ ना। तो ये तो 24 घंटे लगातार श्वासोश्वास अभ्यास किया जा सकता है, पर वो अभ्यास पक्का हो, इसलिए योग में बिठाया जाता है, वो पक्का कराया जाता है। परंतु समाज में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें क्या है कि हमको अपनी एनर्जी वेस्ट ना हो, सोच कितना चलता है, पर चिंतन, दोष दर्शन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के कारण कितनी सारी परिस्थितियां आती है। हम समझते हैं, परंतु भगवान कहते हैं तुम संसार में रहते कमल के फूल के समान रहो, तुमको नारी को लक्ष्मी बनना है, पुरुष को नारायण बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो इसलिए दैवी गुण चाहिए। समय तो क्योंकि बरसात के कारण भी थोड़ा देर से शुरू किया है, तो अब मनुष्यों से फेस करने के लिए, परिस्थिति को फेस करने के लिए हमको देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं ना, तो 8 शक्तियां चाहिए। 8 ये हाथ नहीं है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो एक है विड्रॉ, यानी विस्तार, आपको जैसे कछुआ जैसे होता है ना, फैल चलता है तो अंग समेत फैलते हैं, बैठता है तो अंग समेट लेते हैं। उसकी उसकी कमर इतनी मजबूत होती है, उम्र 250 साल तक चलता है, पत्थर क्या पहाड़, बस भी ऊपर से चली जावे तो टूट कमर नहीं टूटती। क्यों? उम्र लंबी भी हुई, शरीर भी स्ट्रांग क्यों है? जो एनर्जी जितनी यूज करनी थी, घास खाना है जो कुछ खाना है उसके लिए बाहर अंग फैलते हैं, खा लिया अंदर चले गया समेट लिया। तो हमारा सोच, कोई बात हो गई जिस वक्त सोच रहा उसे समझा, स्टॉप किया, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। बात हुई है, हम 25 साल तक 30 तक सोच रहे थे, दुख किसी ने दिया बड़ी खराब बात थी, अरे ऐसी बेइज्जती की, सारी दुनिया मेरी शान खत्म कर दी, मेरे दिल में बहुत परेशानी है भाई। कब कही थी ये बात, क्या रबिश थी, बिल्कुल खराब बात थी, कहाँ रखी, दिल में रखी हुई है। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। अरे तेरा दिल कूड़ेदान है क्या? अपने दिल को रेस्पेक्ट तो दो। डस्टबिन है क्या जो रबिश थी और अपने दिल में रखी हुई है? अब जरूर अंदर कीड़े पैदा होंगे ना, मकोड़े पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे, वो काटते रहते हैं। तो परेशान क्यों हुए है? क्योंकि गंदगी अंदर रखी हुई। बदबू क्यों आई? क्योंकि सड़ी हुई चीज रखी है अंदर। तो लेट गो करे, जो पास्ट हो गया उसको समझने के लिए बेहद का नाटक, कैसे नाटक है, एक्ट उसने रावण वाली की है, पर मैं तो राम का पार्ट प्ले करूं ना, कोई स्वरूप रखा वाला पार्ट प्ले करता है, मैं तो सीता वाला पार्ट प्ले करूं ना, मुझे अपना पार्ट क्या प्ले करना है? अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, मन की शक्ति को वेस्ट नहीं किया, मन प्रसन्न रहेगा। मन की शक्ति या सोच की शक्ति, परचिंतन दोष दर्शन व्यर्थ चिंतन किया मन कमजोर हो जाएगा। प्रेम की शक्ति आत्मा की, प्रेम की शक्ति सुख देने वाली है, मोह की शक्ति दुख देने वाली है। प्रेम को मोह में बदल दिया देहभान के कारण, जैसे पानी में मिट्टी मिल गई, कपड़ा मेरा साफ करेगा, मैला करेगा ना, और मिट्टी मिल गई तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, और मिट्टी मिल गई तो उसका फ्लो कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मिट्टी मिली तो कीचड़ बन गया। पानी चिपकता नहीं हाथ को, कीचड़ चिपकता है। तो प्रेम जब मोह में बदल गया तो चिंता, डर, परेशानी, सोच, पता नहीं क्या हो जाएगा, इनसिक्योरिटी, ये सब बातें सामने आने लगती है। इसलिए कोई भी बात की क्लैरिटी चाहिए तो नॉलेज चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए। प्रेम से काम सब परिवार संभालो, पर मोह से नहीं संभालो। शांति से आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बात बेशक करो, समझ से करो, बैठा के शांति से बात करो। पैकअप, पिछली अच्छी बात भी उनकी कहेंगे, कोई एक बारी भूल की, तू तो सदा ही यही करता है, भूल एक बारी की है, सदा करता है। तो वो तो जो अच्छी की थी उसको भी बुरा कर दिया। तो इसलिए पास्ट को पास्ट करना है और विस्तार को समेट लेना है। हम क्या करते हैं, कोई बात होती है ना, एक को सुनाई, दूसरे को सुनाई, तीसरे को सुनाई, दुख ले लिया। अब दुख इतना ज्यादा ले लिया जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आखिर उल्टी करेंगे ना, इसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, वातावरण खराब होगा, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो समझ के साथ साथ सोच भी बदले, समझ भी बदले, फिर जो है किसी भी प्रकार के पर सहन करने की शक्ति चाहिए, समझो अब भी समेटने की शक्ति चाहिए, बात हो गई खत्म, समेट लो। काम की नहीं है उतनी, जितने काम किया उतनी अपने पास रखो, बाकी को आप ट्रैवल पर जाते हो, सारा घर साथ में उठा के लेके आते हो क्या? बैग बना के जो जरूरी है उतना ही ले जाते हो। तो मुझे भी जो जरूरी बात उसमें से सीखनी है वो सीख ली, बाकी काम की नहीं है, पड़ी रहे। फिर है सहन करने की शक्ति। अब देखो, अगर आपको कोई तंग करता है, उसको जरूर एक्सपेक्टेशंस है आपसे कुछ गुण लेन ग्रहण करने की, आपसे कुछ वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप समझ करके वो एक्सपेक्टेशंस राइट है या नहीं, राइट टाइम है या नहीं, उसके बदले में कुछ समझ के शांति से प्रेम से समझा के दो। देखो हमारे पास चित्र हैं बने हुए, सहन करने की शक्ति का मतलब कि पेड़ पर पत्थर मारो तो वो पत्थर तो आपके पास वापस आएगा, पेड़ आपको क्या देगा? फल देगा। पत्थर क्यों मारा पेड़ पर? वो फल मेरे को दे देगा। तो ये भी कभी कभी आपको कोई टोंट करके कोई बात कहता है, एक्सपेक्ट भी करता है या ईगोवश भी कहता है, समझ लिया तो हम उसी अनुसार हैंडल करेंगे। तो इसलिए ज्ञान भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और कोई बात हो गई तो हृदय की पवित्रता और शुद्धता भी चाहिए, स्वमान भी चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो मानो किसी ने आपका अपमान किया और आपने समझा कि ये तो यानी कितना झूठ है, इस वक्त पे तो मेरे ये बात तो थी नहीं, इसने तो उल्टा कर दिया, अभी आपके मतलब आपकी वैल्यू खत्म कर दी। अब आपके पास हीरो का व्यापार है, आपकी दुकान पर कोई आया हीरा लेने, वो भुए की परख उसको है नहीं, परंतु वो जानना चाहता है हीरो कैसे रहते हैं। कहा ये कोई रियल थोड़ी है हीरो, हीरा इसकी कोई तो ये वैल्यू तो नहीं है। तो जो जो व्यापारी है हीरे का, वो जिसने कहा ये तो पत्थर है, बनावटी है, झूठा है, सुन करके अपना हीरा फेंक देगा क्या या हंसेगा? इस बेचारे को पहचान ही नहीं है, उसको स्वमान है अपने हीरे का, तो अपमान नहीं लगेगा। तो अगर कोई अहंकारवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, स्वार्थवश उल्टा बोलता भी है, तो आप अगर साक्षियों करके देख रहे हैं कि ये देह के अभिमानवश बोल रहे हैं और मैं आत्मा अपने स्वमान में टिकूं, तो फौरन जो है अपनी वैल्यू से उस आत्मा की जो कमजोरी है, दाग है, वो धुलाई कर लेंगे ना, आत्मा में शक्ति आ जाती है। अपमान नहीं, स्वमान में रहने की, अपमान अपमान नहीं लगता, मान अपमान निंदा स्तुति में स्वमान रहता है, क्योंकि साक्षी होकर के देखता है। तो ये एग्जाम्पल थोड़े थोड़े दिए हैं, सारी तो बातें एक दिन नहीं समझ आई, समझ सकते या समझा सकते टाइम के हिसाब से भी, परंतु कहने का मतलब ये है कि अभ्यास करने से ही अनुभव बढ़ता है, अभ्यास करने से अनुभव बढ़ता है, अनुभव करने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से आपके अंदर शक्ति आती है, हिम्मत आती है, उमंग और उत्साह बढ़ता है। उमंग और उत्साह बढ़ता है तो आपको पंख लग जाते हैं, जैसे अपने अपनी हिम्मत से आपकी हिम्मत बढ़ती है, आप एक कदम हिम्मत का उठाते हैं, हजार कदम परमात्मा की मदद मिलती है। तो इसीलिए ये रोज की पढ़ाई काम आती है, अभ्यास काम में आता है, अनुभव का कोई चीज आप प्रैक्टिकल में खाएंगे तो आपको पता चलेगा टेस्ट है, खट्टा है कि मीठा है। अनुभव करते जाएंगे गुणों का तो सर्व गुण संपन्न गुण संपन्न बन जाएंगे, चंद्रमा की तरह संपूर्ण शीतलता आ जाएगी, सूर्य की तरह अंधकार मिटाने की शक्ति आ जाएगी, तो सूर्यवंशी देवता अथवा ईश्वरीय कुल की ईश्वरीय संतान या ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म, तो जो एक एक शब्द है उसके पीछे उसका अर्थ है, वो कनेक्टेड है इससे। तो आप जब अपने स्थान पर वापस जाएंगे, सेवा केंद्र पर जाएंगे, तो एक दिन में समझ में नहीं आता है। 8 दिन का कोर्स होता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि पहले तो बताया ना धोबी की भट्टी, पहले तो सफाई होती है। पहले दिन बताया था ना कि कॉन्शियस में आए हो, धोबी की भट्टी में आए हो, सुनार की भट्टी में आए हो, या लोहार की भट्टी में आए हो, या रंगरेज की भट्टी में आए हो, अपने आप को किस रंग में रंगने आए हो, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए आए हो, श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हो, तो स्टेप बाय स्टेप सब बातें समझ में आएंगी। ऐसे तो विचार तो यह था कि आपको कहें क्वेश्चन पूछो, पर मैंने कहा मैं कुछ क्लियर कर दूं, क्वेश्चन आप पे ही उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए तो आपके कई क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आंसर आ भी गए होंगे। और फिर मेडिटेशन का टाइम भी होता है, और क्योंकि अभी ये प्रकार समय अनुसार लिमिटेशन भी आ गई है कि 7 बजे जो है ऑटोमेटिकली बाहर की लाइट तो ऑफ है, पर अंदर की लाइट हमारी जगी हुई है, बाहर ब्लैक आउट है, अनाउंस हुआ ब्लैक आउट, और हमको रियलाइज हुआ ये हम लाइट हाउस माइट हाउस वो ब्लैक आउट है, हम लाइट हाउस है माइट हाउस है। इसलिए अपनी शक्ति को अंदर कायम रखना है, तो हमारा शुद्ध वातावरण परिस्थिति को शांत करेगा, और जो जिनको सामना करना है उनके अंदर भी शक्ति आएगी और शुभ भावना पहुंचेगी। कोई भी तरफ के व्यक्ति हो, वास्तव में तो युद्ध ही है, जरूर एक दो को शरीर खत्म करेंगे, आत्मिक बल तो किसी को नहीं देंगे, तो परमात्मा तो आत्मिक बल भरते हैं। इसलिए स्वमान में स्थित होने के लिए अभ्यास करना है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो वैसे क्वेश्चन पूछने का चांस देती, अभी क्वेश्चंस का चांस नहीं, पर 15 मिनट योग कराती हूँ, क्योंकि 6:30 खत्म करना है। थोड़ी देर में मेडिटेशन कमेंट्री करती हूँ। आपको मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, मन में वो उसकी फीलिंग क्रिएट करो। शब्द मैं बोलती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं फील करती हूँ, आराम से बैठो, और फिर 6:30 हम पूरा करेंगे, ताकि आपको भोजन का हो, और फिर अनाउंस करेंगे कि बाकी जो आपका टाइम टेबल है वो कैसे सेट करें, क्योंकि सवेरे 3, 3:30, 4 बजे उठ के आना, लाइट तो नहीं जला सकते, तो 4 बजे कमरे में योग करो, 6 बजे तक आपके पास टाइम है, फ्रेश हो स्नान करके फिर आओ, तो फिर आपका क्लास उस समय हो जावे 6 से 7 बजे तक का, वो जो बराबर करने का, तो वो थोड़ा अनाउंस करेंगे, थोड़ा विचार करके आपको बता देंगे जाने से पहले, या अनाउंस करेंगे ताकि थोड़ा चेंज करें, क्योंकि वो रात को 3:30, 4 बजे अंधेरे में आना, नहीं तो फिर लाइट भी जलाने का प्रैक्टिकल रूप डिसिप्लिन को फॉलो करना भी हमारा फर्ज है। रिलैक्स, आराम से बैठो, ओम शांति। मैं आत्मा हूं। ओम मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, चेतन शक्ति परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मैं शुद्ध आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है, मुझ आत्मा की चैतन्य शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार हैं। मन विचार शक्ति है, सोचने की शक्ति है, मेरा सोच ही मेरे अंदर फीलिंग उत्पन्न करता है। जैसा सोच वैसा स्वरूप, पॉजिटिव थिंकिंग से मेरी एनर्जी मेरे स्वरूप को शक्तिशाली बनाती है। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में मस्तक में विराजमान अकाल मुहूर्त आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मैं अपने थॉट सोच कंसंट्रेशन बाकी कर्म इंद्रियों से अलग मस्तक पर विराजमान चैतन्य चमकता सितारा हूं। मैं भाग्यवान आत्मा, परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मैं प्यार से शिव को बाबा कहती हूं। मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा मन एक शांत सरोवर की तरह है। शांत सरोवर मन में प्रभु प्रेम की लहरें आनंद का अनुभव कराती है। हर श्वास में शांति और आनंद समाया है। शुद्ध संकल्प में दृढ़ता समाई है। मैं सचमुच परमात्मा की संतान श्रेष्ठ आत्मा शुद्ध आत्मा। परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। ये परमात्म प्यार मेरे हृदय को स्वच्छ बनाने वाला, बुद्धि को दिव्य बनाने वाला प्यार है। प्यार के लहरों में लहराते आत्मा जैसे कि आनंद का झूला झूल रही है। परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार मात्र स्नेह का अनुभव कराने वाला, सुखदायी प्यार है। जो मुझे स्वच्छ भी बना रहा है, शुद्ध भी बना रहा है। इस प्यार में शक्ति समाई है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, जितना ही प्रभु प्रेम रस का अनुभव करती हूं देह के भान से न्यारी, प्रकृति के प्रभाव से परे, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, जितना गहराई में जा रही हूं उतना ही परमात्म प्यार खींच रहा है। हर प्रकार उसके बोझ और बंधन से न्यारा बना रहा है। मेरे दिव्य संस्कार परमात्म प्रॉपर्टी है, परमात्म दीन है, मैं दाता की बच्ची शुद्ध आत्मा देव कुल की आत्मा, ईश्वरीय संतान, लाइट रूप, लाइट हाउस और माइट हाउस। मैं चलता फिरता लाइट हाउस, अज्ञान अंधकार से परे, निजी स्वरूप में शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा। हर श्वास में शांति समाई है। हर संकल्प में प्रभु प्रेम समाया है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। सच्चिदानंद की संतान, आनंद स्वरूप आत्मा। Om Shanti. Om.